प्रपन्न पारिजाताय तूपवेत्रै गोपानाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रणश्रीभूषितकरां नवनीतराभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरोत्थात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखाधरविन्द नेत्र कृष्णात् परां किमपि तत्त्वं न जाने हरि ओं नमो परमात्मने नमो नमस्ते दो प्रश्न आए हैं, उसमें पहली एक बात पूछी कि कर्ता कौन है, कि चेतन भोगता है, कर्ता नहीं हो सकता, कर्ता कौन है, ये प्रश्न है। तो ये अपने बहुत बार चला है इस साल, जितना ये है कर्ण निरपेक्ष के विषय में बात चली, इसी हरेक विषय में हरेक वर्ष में नहीं चलती है। वही बात ये है, कर्ता कौन है, चेतन कर्ता है कि चेतन भोगता है, कर्ता नहीं हो सकता, कर्ता नहीं हो सकता और भोगता ये नहीं है। कर्ता भोगता ये जो कर्ता है वही भोगता बनता है, और भोगता है उसने ही कर्म किए हैं उसका फल भोगता है। तो कर्ता भोगता नहीं, तो मेरे बात भी चेतन कर्ता नहीं है, ये तो मैंने कहा होगा, परंतु चेतन भोगता है, कर्ता नहीं हो सकता ये नहीं कहा मैंने, कर्ता नहीं हो सकता ये नहीं कहा है। मैं बात कहता हूँ वो ध्यान देकर आप लोग सुने, ऐसा मैंने कहा है वो किस रीति से कहा है वो सुनाऊ आपको। भोगता बिना चेतन के नहीं बन सकता ये कहा, कार्य कर्ण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुचरे और पुरुषा सुख दुखानाम भोगतृत्व हेतु रुचरे। तो भोगतापन में चेतन को भगवान ने कहा, परंतु भोगता हुआ होता है पुरुषा प्रकृतिस्थ हो ही भोगते, प्रकृति में स्थित होकर के ही भोगता बनता है, प्रकृति में स्थित न हो तो भोगता भी नहीं बनता। परंतु कर्ता प्रकृति बनती है, उसमें प्रकृति की प्रधानता है, भोगतापन में चेतन की प्रधानता है। मैंने दृष्टांत देकर ये बात कही थी, जैसे मोटर से कोई आदमी मर गया तो उसको पकड़ ले जाके सलाह होगी, तो ड्राइवर ने पुरुष को छुआ ही नहीं, वो तो गाड़ी के चक्कों से ही पीछा गया। अब वो उस मरने वाले को ड्राइवर ने छुआ ही नहीं, पर दंड है मोटर को छुएगी नहीं, दंड ड्राइवर को होगा। इस तरह से कर्ता पर इस जीव से होता है, तो कर्तापन में प्रकृति हेतु होती है, पर दंड भोगने में केवल प्रकृति नहीं होती और कर्तापन में प्रकृति हेतु होती है। तो वह चेतन भोगता हुआ है, बिना चेतन के भोगता बन नहीं सकता ये मैंने कहा है। इसमें समझ ले, चेतन भोगता होता कर्ता नहीं होता, ऐसा उन्होंने समझ लिया, तो ये मेरा भाव नहीं है। चेतन भोगता होता है वही भोगता, कर्ता होता है भोगता होता है, भोगता है वही कर्ता बना है, पहले तो उसको भोग होगा। परंतु इसका बारीक भेद है वो बताने की चेष्टा करी है मैंने, इन दोनों में बारीक भेद है। तो कर्तापन में प्रकृति की मुख्य है, भोगतापन में चेतनता की मुख्यता है, पर दोनों मिलने से ही कर्ता और भोगता बनते हैं। केवल चेतन भोगता नहीं बनता, केवल चेतन कर्ता भी नहीं बनता, दोनों मिलकर होते हैं। अब इसमें कोई शंका तो पूछ लो फिर इसमें सभागार में। उन्होंने बताया नहीं, चेतन भोगता है, कर्ता नहीं हो सकता। तीसरा नहीं, चेतन भोगता है कर्ता नहीं है, ये बात नहीं। पर मेरी बात का ऐसा अर्थ निकलता है, शंका ऐसी हो सकती है, ये संभावना है। इनमें शब्द इतना ही लगा दो कि कर्तापन में प्रकृति की मुख्यता है और भोगतापन में पुरुष की मुख्यता है, तो मुख्यता शब्द लगा तो फिर ठीक बैठेगा। कर्तापन में चेतन और जड़ दोनों है, भोगता में चेतन और जड़ दोनों है। दोनों होते हुए भी कर्तापन तो केवल प्रकृति से होता है और भोगता में केवल चेतन से होता है, ऐसा नहीं है। केवल चेतन में कर्ता भोगतापन दोनों नहीं है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थोभ कौन से है, न करोते न लिप्यते। जब न करोते में कर्तृत्व सिद्ध किया, न लिप्यते भोगतृत्व सिद्ध किया। ये कर्तृत्व भोग तो प्रकृति में स्थित होने वाला ही होता है। इस वास्ते नश्य न अहंकृत भाव, जिसके अहंकृत भाव नहीं है, और बुद्धि यश्य न लिप्यते, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती है। हत्वाभिष मान लो का सबों को मार दे, न मारता है और न बंधता है। ये बंधता है ये लिप्त होने से, और कर्ता होता है उसके साथ में कर्म करने से कर्ता बनता है। तो जिसके अहंकृत भाव नहीं है, ना वो करता है ना बंधता है, दोनों नहीं होता। कर्म योग है वो लिप्तापन को दूर करने में मुख्य है। ज्ञान योग है वो कर्तृत्व भाव दूर करने में मुख्य है। दोनों दूर हो, दोनों से। ज्ञान योग से करते तो भोगते दोनों मिटते हैं, कर्म योग से करते तो भोगते दोनों मिटते हैं। पर कर्तृत्व तो दूर करने के लिए ज्ञान योग मुख्य है, और लिप्तता दूर करने के लिए मुख्य कर्म योग है। अब इस शंका करो तो बहुत खुलेगा विषय, समझ में आएगी तो ठीक है, थोड़ी बहुत समझ में नहीं आए तो पूछो। आप पूछोगे उस सिस्टम विषय खुलेगा, बहुत स्पष्ट बहुत होगा, साफ हो जाएगा। नारायण 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 नारायण। अच्छा, कर्म होने में पांच हेतु बताए। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथ्विधम देवदास पृथक श्रेष्ठा दैवम सैवात पंचम शरीर वांग मनो भी, चाहे शरीर से हो, वाणी से हो, चाहे मन से, तीनों में से किसी से कर्म है। मन शारीरिक वाचनिक मानसिक कर्म है, और न्याय हुआ विपरीत होगा, चाहे वो विहित हो चाहे निषिद्ध हो, पुण्य हो अथवा पाप हो, ये पांच हेतु बनते हैं। अब पांच हेतु बनते हैं, उनमें कर्तापन है, ये कर्ता शब्द दिया है तो कर्ता में चेतन होता है, पर कर्ता है चेतन में कर्तृत्व आरोप किया है। प्रकृति क्रियमाणानी गुणे कर्माणी सर्वसा, प्रकृति के गुणों के द्वारा कर्म होते हैं। अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अपने को कर्ता मान लेता है, तो कर्तापन की मान्यता ये कर लेता, मैं करता हूँ, उसको फिर फल भोग नहीं पड़ता है। तो कर्ता वो लेना, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इसी मान्यते, वो कर्ता लेना है, यहाँ चेतन को नहीं। इस वास्ते वहाँ जहाँ ये पंचे देते से हेतु तत्व सती कर्तारम आत्मान केवलं तुया एवं सती, ऐसा होने पर केवल आत्मा को जो शुद्ध आत्मा को कर्ता मानता है वो दुर्मति है। दुर्मति का क्या है, अकृत बुद्धित्वात्, मानव बुद्धि को शुद्ध नहीं बनाया, जैसे जन्मा था वैसी बुद्धि मूर्खता की वही पड़ी हुई है, नशा पश्चिम दुर्मति, उसकी बुद्धि दुष्ट है अभी, मानो दोष सहित है। दुर्मति का अर्थ दोष वाली बुद्धि का है, इस बात से वो अपने को कर्ता मानता है, भोक्ता मानता है। तस एवं श्री कर्तारम आत्मानं केवलं तुया पश्यति अद्भुत बुद्धि पर मैं सब प्रसिद्ध दुर्मसी। बुद्धि को बनाया नहीं, बुद्धि को शुद्ध नहीं किया, इस बात से दुर्मसी है वो ठीक नहीं देखता, उसका देखना सही नहीं है, गलत देखना है। तो भोगता तो लिया है पांच हेतुओं में, चेतन को कर्ता का निषेध किया वही हेतु तत्र एवं सति कर्तारम आत्मानं केवल, आत्मा केवल कर्ता हुआ, केवल कर्ता ये बात नहीं है। तो केवल कर्ता का अर्थ दो होते हैं, एक तो पांच मिलकर कर्ता बनते हैं, तो पांचों में एक चेतन होता है केवल आत्मा नहीं, एक अर्थ ये होता है। एक होता है कि ये पांच हेतु बनते हैं, कोई इन हेतुओं को न मगर केवल चेतन को ही करता माने कि चेतन ही मुख्य करता है तो ठीक नहीं है। तो दोनों अर्थों में चेतन करता नहीं है ये बात आई, परंतु केवल आत्मा ही करता है नहीं, मिलकर करता है ऐसा नहीं है। मानो शुद्ध आत्मा में करते तो है ही नहीं, ये तात्पर्य है। तस्व सति कर्तारम आत्मान केवल अंतरिया, तो केवल पांचों हेतु है अकेला नहीं है ये अर्थ नहीं है, केवल शुद्ध आत्मा में कर्तृत्व नहीं है ये अर्थ है। अब इन शंका हो बोलो, वो कर्ता मानता है अकृत बुद्धि न सपच दूर मसी ये नहान करते हो भाव बुद्धि ये संकृत हतवा भी से मान लो का नहान देना नहीं बुद्धि। अब ये बात अभी कर्ता कौन है ये प्रश्न है, इस पूछने में एक बात ये है कर्ता कौन है। तो कर्ता अपने गीता के अनुसार देखा जाए तो विशेष आप ध्यान दें, गीता अध्ययन करने वाले विशेष ध्यान में थोड़ा ज्ञान है उनको ध्यान दें, और जो पढ़े हुए उनको तो ध्यान है इस बात का। गीता प्रकृति को कर्ता मानती है, प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, प्रकृति के द्वारा ही संपूर्ण क्रियाएं होती है, और प्रकृति गुण प्रकृति के गुणों का जो प्रकृति क्रियमाणानि गुण ही कर्माणि सर्वशः, तो प्रकृति के गुणों के द्वारा सब क्रिया होती है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, वर्तन्ते क्रिया हुई, अगर गुणा गुणेशु गुणा गुणों में बसते हैं तो कर्ता गुणी हुए। इंद्रिया ने इंद्रिया से जो वर्तन थे तो यह इंद्रिया ने कर्ता हुई, इंद्रिया ने इंद्रिया कर्ता हुई। और बड़े जोर से एक बात कही है, ख्याल करो वहां कहा है कि नान्य गुणे भ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपस्थिति, यदा मन जिस काल में दृष्टा नाम विचार कुशल पुरुष, ठीक इसका विचार करने वाला दृष्टा वो विचार करता है, तो विचार करने नान्य गुणे भ्य कर्तारम, गुणों के सरे अन्य अन्य कर्ता को नहीं देखता है, कर्ता केवल गुणी गुण है। नान्य गुणे भ्य कर्तारम यदा दृष्टान पश्यति, और गुणे भ्य से परम वेदी, अपने स्वरूप गुणों से बिल्कुल निर्लेप, परेगा नहीं इधर तो गुण है उधर वो है ये पर नहीं, परमाणु अस्पष्ट असंलग्न कहीं भी आत्मा में लेप नहीं है कर्मों के करने में, परम वेदी वो मध भाव मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। तो कर्तृत्व चेतन में नहीं है, कर्तापन है प्रकृति में, कहीं प्रकृति गुणों में है कहीं इंद्रियों में है, और यह कहा गुणों के सिवाय कोई कर्ता हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। नान्यम गुणे भी अन्वय व्यतिरेक से गुण गुणों में बचते तो गुणों में कर्तृत्व है, और गुणों के सिवाय दूसरी से कर्तृत्व नहीं है, ये दोनों बातें गीता में कही। तो कर्तापन केवल गुणों में रहा, केवल प्रकृति में रहा, इंद्रियों में रहा, इनमें रहा। मैं देखो थोड़े में समझ देता हूँ, आप बैठ जाओ। मैं समझ गया आपका प्रश्न, कि चेतन के संबंध बिना केवल जड में क्रिया नहीं होती, ये आपका मतलब है, ऐसा ही है ना? यही तो बात हुई। मैं कहूँ क्रिया तो वृक्ष के पत्तों में ही हो रही है, हवा चलती है तो उसमें क्रिया हो रही है, चेतन का संबंध कहाँ है? आपकी आंख मिलते हैं, खोलते हैं, आपका श्वास लेते हैं, तो चेतन आप हो, जागृत हो, इसमें संदेह नहीं, परंतु क्रिया में चेतन हेतु कहाँ है? शरीर बालक है, वो बालक से जवान हो गया, क्रिया हुई है तब तो हुआ ना, उस क्रिया में चेतन हेतु कैसे हुआ? भाई पत्ता हिलता है, कपड़ा सुखाया हुआ हिलता है, क्रिया तो होती है, चेतन कहाँ है?
ये कहते हैं कि जब शरीर में से चेतना निकल जाती है तभी शरीर में क्रिया क्यों नहीं होती?
होती है, पड़ा रहो फूल जाएगा लड़का, वो मुर्दा, होती कैसे नहीं क्रिया? तो शरीर में क्रिया नहीं है क्या? और शरीर फूल जाए क्रिया नहीं है? बताओ, नहीं है कि क्रिया नहीं है क्या? मुर्दा फूलता है कि नहीं फूलता है? हाँ, सूखना क्रिया है, सर जावे ये क्रिया है, फूल जावे ये क्रिया है, क्रिया कैसे नहीं है? मैंने तो ये बात बहुत जोर से लिखी है साधन संजीवनी से, और बहुत जोर से मैं कहता हूँ कि प्रकृति कभी अक्रिय रहती ही नहीं, प्रलय अवस्था में क्रिया है, महाप्रलय अवस्था में प्रकृति में क्रिया है, क्रिया बिना की रहती ही नहीं, प्रकृति महाप्रलय में क्रिया है, सर्ग में क्रिया है, प्रलय में क्रिया है, महासर्ग में क्रिया है, महाप्रलय में क्रिया है, जिस समय क्रिया लीन हो जाती है उस समय प्रकृति में क्रिया है। बोलो, खूब विस्तार से लिखा है तीसरे अध्याय में, क्रिया मात्र जड में ही होती है, चेतन में होती ही नहीं। चेतन का सकाश होने से होते, चेतन का सकाश कहाँ नहीं है, आप बताओ? अगर चेतन के सकाश से मानो तो हम मान लेंगे, क्योंकि चेतन का संबंध कहाँ नहीं है, वो प्रकृति कहाँ है, किसी से चेतन का सकाश ही नहीं है, ऐसी रह ही नहीं सकती प्रकृति, चेतन के संबंध बिना प्रकृति की सत्ता ही नहीं है, चेतन बिना प्रकृति के रह सकता है? चेतन और प्रकृति से उनके बिना नहीं रह सकती, प्रकृति का साथ रहता है। एक बात, अब दूसरी बात और बताता हूँ, आप इसमें शंका करो, पूछो तो और बात बताओ, संदेह हो तो बोलो। अब एक बारीक बात है वो बताओ, एक क्रिया होती है, एक कर्म होता है, क्रिया को भी कर्म कहते हैं, कर्म को भी क्रिया कहते हैं, परंतु क्रिया शब्द है वो केवल हसल का वाचन है, जिसमें पाप पुण्य पैदा होते हैं उसको कर्म कहते हैं, कर्मजन्य अगर सुख दुख होंगे तो कर्म बनता है चेतन के संबंध से, क्रिया होती है केवल जड़ में, कर्म चेतन के संबंध से बनेगा, बिना चेतन के कर्म नहीं बनेगा, और उसका पाप पुण्य नहीं होगा, बालक से जवान हो गया तो पाप लगेगा, जवान हो गया मैं कहता हूँ कि मुर्दा फूल गया, उसमें अहंकार भाव क्या है? देखो बात पूछ कर, देखो तो आप इतनी कृपा करो कि मुर्दा फूल गया, उसमें चेतन का संबंध क्या रहा, उसमें अभिमान क्या रहा?
आपकी बात सुनाई नहीं दी।
मानो मुर्दा सूख जाता है, मुर्दा सड़ जाता है, मुर्दा फूल जाता है, इसमें चेतन के संबंध से कौन सी क्रिया हुई, बताओ? करते तो अभिमान के बिना क्रिया होती है, जैसे आपको बताऊं कि आप हम भोजन करते हैं तो उसमें हम करते तुड़ते हैं, परंतु भोजन पचता है उसमें क्रिया करते हैं क्या, उसमें आप करते जो अभिमान रखते हैं क्या, भोजन जो पचता है उसमें क्रिया करने वाले आप होते हो। दांत से अच्छा हो परीक्षा करके वो बता सकता है इतना भोजन पका है इतना भोजन नहीं पका है, तो पचने रूपी क्रिया होती है, उस क्रिया में चेतन का हाथ होता है, कर से तो अभिमान होता है क्या। श्वास चलता है क्रिया होती है परंतु चेतन का हाथ होता है क्या। आंख खुलती है बीजती है उसमें चेतन का हाथ होता है क्या। नाड़ियां चलती है दांत देखता है वैद्य तो उस चेतन होती है, चेतन वो क्रिया होती है ना फेफड़े की, बिना नाड़ कैसे चलती है, तो नाड़ियां चलती है खून का दौरा होता है इसमें कर्तव्य अभिमान होता है क्या, बताओ। इसमें कर्तव्य अभिमान नहीं होता है, जानकर नहीं होती है, स्वतः होती है। विश्वास चेतन के और चेतन का सकाश कहो तो मैं कहता हूँ चेतन के सकाश बिना प्रकृति की सत्ता ही नहीं, प्रकृति ठहरेगी कैसे, उस सत्ता तो चेतन से ही मिलती है। जितनी क्रियाएं होती है सब चेतन के साथ में होती है, मन चेतन में करते तो अभिमान हो, चेतन में करो करता हूँ ऐसा हो ऐसा नहीं बनता है। खूब समझो इस विषय को और नहीं समझ में आज पूछो तो बिना चेतन क्रिया होती वो कर्म नहीं बनता। नाड़ी चलती है खून चलता है, कृपानाथ मेरी बात को ठीक तरह से समझो, बिना समझे मत बोलो। इतने आदमियों को देखो आप अकेले आ जाना, आप बोलते हो मैं बात कह दी फिर बात वही बासी, ऐसे मत करो। कृपानाथ मेरी बात को समझ करके बोलो और नहीं तो अपने दो गए आज बात करेंगे। इतने आदमियों का समय खराब मत करो और मेरे बात को ठीक समझ लो फिर करो बात, तो हम खुशी करेंगे। फिर वही बात आप कहते हो तो क्या बात होगा, मेरी बात है क्या अर्थ हुआ, तो आप अकेले बात कर लेना। चेतन का सकाश तो मैंने इतना स्वीकार कर लिया कि प्रकृति क्रिया रहित तो होती ही नहीं, प्रलय में भी महाप्रलय में भी नहीं होती। अरे आप में मैं बता दूं क्रिया, आप में क्रिया होती है, आप सोते हो गाढ़ नींद में उसमें आप में क्रिया हो रही है, श्वास चल रहा है और क्रिया हो रही है। और प्रत्यक्ष क्रिया आपको बताऊं कि आप 10 बजे सोते हैं 4 बजे उठते हैं और 11-12 बजे उठा दे कोई तो कि तुमने कच्ची नींद में जगा दिया, तो नींद कच्ची से पक्की होगी तो क्रिया होगी ऐसे हो जाएगी। बिना क्रिया कोई फल पक जाता है, ऐसे बिना क्रिया हुए कच्ची नींद पक जाती है, पकती है तो क्रिया नहीं होती है क्या। अब नींद पक गई तो कच्ची से पक्की बनी जो क्रिया होती है, नहीं तो पक्की कैसे, कच्ची नींद में जगा दिया तो नींद कच्ची होती है फिर पकती है, तो कच्ची से पक्की है क्रिया होती है, क्रिया बिना कैसे पकेगी। खूब गहरा होता है एक विषय में गहरा समझो आप, नींद पक्की था कच्ची नींद में जगा दिया तो कच्ची से पक्की होगी जब कि नींद पकती है कि नहीं, समय पर नींद पक जाती है तो कच्ची से पक जाती है तो परिवर्तन होता है उसमें फर्क पड़ता है, तो क्रिया हरदम होती है प्रकृति के कार्य में, प्रकृति में क्रिया हो रही है हरदम। मैंने एक दिन सुनाया था कि नदी पर कई आदमी खड़े थे, एक बाबा जी भी खड़े थे, तो कहा महाराज देखो नदी बह रही है, नदी बह रही है मानो पानी बह रहा, तो बाबा जी कहे नदी बह रही है तो देखो पुल पर भी आदि बह रहे हैं, पुल पर भी आदि बह रहे हैं। फिर बोले कि नदी का जल बह रहा है आदमी बह रहे हैं और पुल भी बह रही है, पुल कहाँ बहती है, बरसों से यही देखते हैं हम तो पुल तो नहीं बहती, पुल बहती है कैसे है। कि जिस दिन पूर्व बनी थी उतनी नदी उतनी नई आज है क्या? तो बह गई कि नहीं? जो नया पना बह गया, पुराना पना आ गया, तो नदी भी बहती है, पहाड़ भी बहता है, पृथ्वी भी बहती है। प्रकृति के कार्य मात्र में होती है, प्रलय अवस्था में भी होती है, महाप्रलय अवस्था में भी होती है। प्रकृति निष्क्रिय रहती है नहीं, हरदम क्रिया होती है। समझो क्रिया में लोग अभी साधारण रीति है तो क्रिया होती है वो चेतन और क्रिया नहीं होती, हो जाए क्रिया होती है चेतन कहेंगे, चेतन में क्रिया कभी हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव ही नहीं। क्रिया सब चेतन जड़ में ही होती है, क्रिया केवल जड़ में होती है। मैं करता अहम इसी मान्य थे, चेतन है वो मान लेता है मैं करता हूँ, तभी कर्तव्य भाव मिटता नहीं तो मिटेगा कैसे? असली करते तो मिट जाएगा क्या? इससे नाहकृत भाव ये वो बोली चलेगा, अकर्तारम से पैसे थी वो अकर्तारम पैसे थे कैसे होगा? अकर्ता हो ही नहीं सकता। अरे अकर्ता तो हो सकता है, कर्ता हो नहीं सकता। कर्ता तो मांगना पड़ता है, अरे अकर्ता तो सोता रहता है। शरीर सौ भी कौन थे न करो थे न लेते थे, शुद्ध में तो कर्ता कर्ता पर नहीं होता। शरीर सौ भी न करो थी, शरीर में सिद्ध ही नहीं करता है, ये गीता कहती है। अब इसमें शंका करो, जो आपके मन में शंका है समझ करके बाबा, बेसमझे नहीं मैं कह दूं फिर उसी को बाधा कर क्या फायदा? समझो गहरे समझ करके बात करो, शंका करो कोई, जो गहरा समझोगे त्यों ही उसमें विशेष खुलेगी बात। नारायण 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 नारायण।
शरीर में भी कर्ता जड़ प्रकृति दोनों अलग अलग होते हैं क्या?
मासूम से में क्रिया होती है, कारण में ही होती है, और स्थूल में भी होती है। सब प्रकृति के कार्य है, स्थूल सूक्ष्म कारण सब शरीर प्रकृति के कार्य है। स्थूल सूक्ष्म और कारण ये तीन भेद बताए हैं। संसार मात्र में तीन भेद होते हैं, शरीरों के भी तीन होते हैं, प्रकृति के तीन रूप होते हैं, एक कारण रूप होता है, एक सूक्ष्म रूप होता है, एक स्थूल रूप होता है।
महाराजी वहम यूँ हो जाता है, मुर्दा न तो बोलता है न सुनता है न देखता है न हाथ हिलाता है न पैर हिलाता है, इसलिए
भूल गया ना वो क्रिया नाम। जो विचार करोगे दार्शनिक विचार से तो एक एक बात बोल जाएगा, गहरा विचार करोगे तब होगा ना। वो खाना पीना नहीं होता, चलना फिरना नहीं होता, बोलना चलना नहीं होता, तो नहीं होने से क्रिया होती नहीं, कैसे कह दिया? विशेष क्रिया नहीं होती। मैं तो कहता हूँ विशेष क्रिया आप में होती है, भोजन पचता है, पर आपके मन में होता है जितना भोजन मैंने पचा लिया इतना बाकी है, करने में तो इतना तो कर दिया, अतृप्ति पूर्ण कर दिया, ये करने में तो आप सावधानी है, मन पकाने में भी है क्या? तो बिना अहंकृत भाव के होता है ना, प्रत्यक्ष अनुभव है सबका।
बोलना सुनना
ये नहीं होगा,
क्यों नहीं होता?
मगर इसमें सूक्ष्म शरीर नहीं रहा, ये पांच ज्ञाने मेरे, पांच कर्म मेरे, पांच प्राण, ये सूक्ष्म शरीर है। वो सूक्ष्म शरीर निकल गया उसी बात नहीं होती, इसी क्रिया नहीं होती। शरीरों को लेकर सही भाग वो निकल गया वो क्रिया नहीं होती। और केवल जड़ में सूक्ष्म शरीर के बिना केवल स्थूल शरीर में क्रिया होती है, जो फूलता है, कीड़ा पड़ जाता है, सूख जाता है, क्यों जाता है। इस विषय को खूब समझना चाहिए, सत्संग करने वाले भाई बहनों को तो इस विषय को ठीक समझ लेना चाहिए, नहीं समझे मत पूछ लेना चाहिए। स्थूल आदमी स्थूल दृष्टि से तो क्रिया तो चित्र में जो होती जड़ में होती नहीं, हम कहते जड़ में ही होती, चित्र में होती ही नहीं। आप कहते होती तो हम मान लेते होते सर, आप ठीक है सर। नारायण 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 नारायण। अब सुनो
राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण समत 5216 ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या 24 मई 1990 को करीब प्रातः 8:30 बजे हुआ। राम।